नमस्कार भारत, 6 अगस्त सोमवार, मैं हूं आदर्श राठौर। एक हफ्ते में दूसरी बार शक्तिशाली भूकंप से कांपा इंडोनेशिया, 82 लोगों की मौत। मुजफ्फरपुर यौन शोषण मामले में विपक्ष के बाद नीतीश सरकार पर अब गठबंधन के अंदर से भी पड़ने लगा दबाव। भाजपा नेता सीपी ठाकुर,
डिपार्टमेंट का जो मिनिस्टर उसको रिजाइन कर देना चाहिए। हम ही अगर मिनिस्टर रहते और हमारे डिपार्टमेंट में हर जगह ये होता तो हम तो रिजाइन कर देते।
और ये सुनिए,
आपको तो अरविंद केजरीवाल, लालू जी, मोदी और राहुल अलग अलग देखने पड़ते हैं, हमें तो सौभाग्य से ये सारे कैरेक्टर एक ही आदमी में मिल गए हैं।
किसकी बात कर रहे हैं वसतुल्ला खान, सुनेंगे पाकिस्तान से आई उनकी डायरी में। लेकिन पहले विश्व समाचार।
विश्व समाचार सुनिए सर्वप्रिय सांगवान से। इंडोनेशिया के लॉम्बोक द्वीप पर रविवार को आए शक्तिशाली भूकंप में अब तक कम से कम 83 लोगों की मौत की खबर है। अधिकारियों का कहना है कि जख्मी होने वालों की संख्या सैकड़ों में है। रिएक्टर पैमाने पर 7 तीव्रता वाले इस भूकंप से हजारों इमारतों को नुकसान पहुंचा है। कई जगहों पर बिजली भी गुल है। लॉम्बोक में एक हफ्ता पहले भी एक भूकंप आया था जिसमें कम से कम 16 लोगों की मौत हो गई थी। इंडोनेशिया में भूकंप का ज्यादा खतरा रहता है क्योंकि ये देश रिंग ऑफ फायर यानी लगातार भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोटों की रेखा पर स्थित है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हजारों छात्र 8 दिन से सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। मुद्दा है सड़क सुरक्षा का। पिछले रविवार को हुए सड़क हादसे में एक तेज रफ्तार बस ने एक लड़के और लड़की को कुचल दिया था, जिसके बाद से ही प्रदर्शनकारी सख्त सड़क सुरक्षा कानून की मांग को लेकर अड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा है कि पुलिस ने सड़क सुरक्षा को बेहतर करने के लिए अभियान शुरू कर दिया है। बीते रविवार को सरकार समर्थकों और प्रदर्शनकारियों के बीच फसाद भी हुआ जिसमें 50 लोगों के घायल होने की खबर है। पुलिस को प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए आंसू गैस का भी इस्तेमाल करना पड़ा। एक छात्र हसन ने अपनी आप बीती बताई। सरकार के समर्थक छात्रों ने हम पर हमला किया, इसलिए हमने एक बिल्डिंग का ताला तोड़ा और 50 के करीब लड़के लड़कियों ने वहां शरण ली। उसके बाद पुलिस और पत्रकारों ने हमें वहां से निकलने में मदद की। पुलिस ने आंसू गैस छोड़ी। सरकार समर्थक छात्रों ने लड़कियों के साथ भी बदसलूकी की। प्रदर्शनकारी छात्र हसन के शब्द। दक्षिण सूडान की सरकार ने अपने देश के विद्रोही संगठन के साथ एक लिखित समझौता किया है। राष्ट्रपति सलवा कीर और विद्रोही नेता रीक मेशर के बीच ये समझौता है सत्ता में साझेदारी का, जिसका मकसद 5 साल से चल रहे गृह युद्ध को खत्म करना है। इस समझौते के मुताबिक विद्रोही नेता रीक मेशर 5 उपराष्ट्रपतियों में से एक होंगे। दक्षिण सूडान में चले गृह युद्ध में हजारों लोगों की जाने गई और लाखों लोग विस्थापित हुए। इससे पहले के शांति प्रस्तावों में कोई कामयाबी हासिल नहीं हो पाई थी। बेनी मेबर दक्षिण सूडान के शिक्षाविद और मानवाधिकार कमिश्नर हैं। उनका मानना है कि समझौते के बाद युद्ध से टूटे देश को राहत मिलने की गुंजाइश है। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता जेकब बुल का कहना है कि अभी खुशी मनाना जल्दबाजी होगी। उन्होंने कहा, अच्छा है कि राजनीतिक दल किसी फैसले पर पहुंचे, लेकिन अब अगला कदम इसके लागू होने का है। देश में 5 उपराष्ट्रपति होने से संसद में 550 सदस्य हो गए हैं। दक्षिण सूडान जैसे देश के लिए ये बहुत ज्यादा है। मुझे नहीं लगता कि हमारी आर्थिक स्थिति इतने सांसदों का बोझ उठा सकती है। दक्षिण सूडान के सामाजिक कार्यकर्ता जेकब बुल के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। स्विट्जरलैंड के पूर्वी हिस्से में एक विंटेज हवाई जहाज पहाड़ से टकरा गया जिसमें सवार सभी 20 लोगों की मौत हो गई। युंकर JU-52 द्वितीय विश्व युद्ध के दौर का हवाई जहाज था। शनिवार को 15 यात्रियों को सैर कराने के लिए इस विमान ने उड़ान भरी थी। हादसे के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया है। स्विस ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन बोर्ड के डेनियल नेच का कहना है कि जहां दुर्घटना हुई उस जगह के हालात देखकर यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि विमान तेज गति से नीचे आया और जमीन से टकरा गया। ना तो वो किसी दूसरे हवाई जहाज से टकराया और ना ही वहां कोई तार वगैरह ही थे। पुलिस का कहना है कि विमान में सवार सभी यात्री 42 से 82 की उम्र के बीच के थे और लगभग सभी यात्रियों के रिश्तेदारों से संपर्क किया गया है। जेयू एयर जर्मन में बने विंटेज हवाई जहाजों का इस्तेमाल सैर कराने के लिए करती है। शनिवार को हुए एक अन्य हादसे में सेंट्रल स्विट्जरलैंड में एक और विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था जिसमें एक ही परिवार के 4 लोग सवार थे। रूस की पुलिस ने 30 LGBT कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है जब वे LGBT समुदाय के अधिकारियों के लिए प्रदर्शन कर रहे थे। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम को आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी लाइव सुन रहे हैं। मैं हूं आदर्श राठौर। कार्यक्रम की शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय समाचार से। इंडोनेशिया के लॉनबोक द्वीप पर आए शक्तिशाली भूकंप में अब तक कम से कम 82 लोगों की मौत हो गई है। अधिकारियों का कहना है कि सैकड़ों लोग जख्मी भी हुए हैं। रिक्टर पैमाने पर इस भूकंप की तीव्रता 7 मापी गई है और लॉनबोक और बाली में हजारों इमारतों को इस भूकंप के कारण नुकसान पहुंचा है। वहां के हालात पर बीबीसी संवाददाताओं की भेजी रिपोर्टों का सार सुनाने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं सरप्रिया सांगवान। सरप्रिया, किस तरह के हालात हैं वहां?
इंडोनेशिया का लोकप्रिय पर्यटन स्थल लॉनबोक कल एक हफ्ते में दूसरी बार जोरदार भूकंप से दहल गया। पिछले भूकंप में जहां 16 लोगों की मौत हुई थी, वहीं कल आए भूकंप में अब तक 82 लोगों के मारे जाने की खबर है। इस ताजा भूकंप का केंद्र लॉनबोक के उत्तरी तट के पास 10 से 10 किलोमीटर की गहराई पर था। लॉनबोक के मुख्य शहर मताराम में कई इमारतें प्रभावित हुई हैं। भूकंप से झटके बगल के बाली द्वीप की राजधानी देनपासार में भी महसूस किए गए। संगला अस्पताल के मेडिकल निदेशक केटू सुदर्तना ने पत्रकारों को घायलों के लिए इमरजेंसी इंतजामों के बारे में बताया। कुछ वक्त के लिए हम घायलों को पार्किंग और जिम एरिया में रखेंगे, अस्पताल के हॉल में भी रखेंगे। आपदा प्रबंधन एजेंसी बीपीबीडी की मदद से इमरजेंसी टेंट भी बनाएंगे ताकि हम सभी घायलों को एक जगह इकट्ठा कर उन पर ठीक से ध्यान दे सकें। लॉनबोक और बाली की सड़कों पर बहुत सा मलबा गिरा पड़ा था जिसे बाद में लोगों ने साफ किया। बाली में कई सेकंडों तक झटके महसूस किए जाते रहे। बाली की राजधानी देनपासार में काम करने वाले एक शख्स ने बीबीसी को बताया। शुरू में तो छोटे झटके आए मगर धीरे धीरे वे तेज हो गए। लोगों ने चिल्लाना शुरू किया भूकंप। सारा स्टाफ हड़बड़ा गया और सभी ने बाहर की ओर भागना शुरू कर दिया। लॉनबोक और बाली में हवाई सेवाएं सामान्य हैं, मगर बाली के देनपासार एयरपोर्ट पर भूकंप के कारण हल्का नुकसान हुआ है। इंडोनेशिया भूकंप संभावित इलाके में आता है जिसे रिंग ऑफ फायर यानी आग का घेरा कहते हैं। इस क्षेत्र में अक्सर भूकंप आते रहते हैं और ज्वालामुखी फटते रहते हैं। 2016 में सुमात्रा द्वीप पर 6.5 तीव्रता का भूकंप आया था जिसमें दर्जनों लोगों की मौत हो गई थी और 40,000 से ज्यादा विस्थापित हो गए थे।
सरप्रिया सांगवान बता रही थी कि इंडोनेशिया के लॉनबोक द्वीप पर आए शक्तिशाली भूकंप ने कितना नुकसान किया है। रुख करते हैं भारत का। मुजफ्फरपुर यौन शोषण मामले में विपक्ष के बाद अब सत्तारूढ़ गठबंधन भी बिहार की नीतीश सरकार पर दबाव बना रहा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता सीपी ठाकुर ने भी विपक्ष की तरह सूबे की कल्याण मंत्री मंजू वर्मा का इस्तीफा मांगा है। सीपी ठाकुर की इस मांग पर उनकी पार्टी की क्या राय है, क्या कहना है जेडीयू का, और बतौर मुख्यमंत्री एक साल बाद फिर से नीतीश जो दबाव में हैं, उनकी पार्टी में क्या चल रहा है? सुनिए पटना से मनीष शांडिल्य की रिपोर्ट।
शनिवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण मामले में धरना देकर एकजुट विपक्ष द्वारा नीतीश सरकार को घेरने की कोशिश की गई। इसके करीब 24 घंटे के भीतर ही नीतीश सरकार को उनके ही सहयोगी दल भाजपा के एक वरिष्ठ नेता की मांग ने असहज कर दिया। समाज कल्याण विभाग द्वारा मुजफ्फरपुर बालिका गृह का संचालन एक एनजीओ द्वारा कराया जा रहा था। भाजपा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सीपी ठाकुर ने इस विभाग की मंत्री मंजू वर्मा से नैतिकता के आधार पर इस्तीफा मांगा है।
डिपार्टमेंट का जो मिनिस्टर है उसको रिजाइन कर देना चाहिए। सीबीआई इंक्वायरी ऑलरेडी है, इंक्वायरी सिवाय कर दी कह देगा कि नहीं इनका कुछ हाथ नहीं है, कुछ ही नहीं है, फिर अपना चले जाएंगे मिनिस्टर। हम ही अगर मिनिस्टर रहते और हमारे डिपार्टमेंट में हर जगह ही होता तो हम तो रिजाइन कर देते।
सीपी ठाकुर के बयान को एक ओर भाजपा उनकी निजी राय बता रही है तो दूसरी ओर पार्टी ने मंत्री के इस्तीफे या उन पर कार्रवाई की मांग से इनकार नहीं करते हुए इसे मुख्यमंत्री के पाले में डाल दिया है। जैसा कि भाजपा प्रवक्ता और पूर्व विधायक प्रेम रंजन पटेल कहते हैं,
देखिए ये सरकार का मामला है और सरकार में मुख्यमंत्री प्रमुख होते हैं। मुख्यमंत्री को लगता है कि अगर उनको दोषी है तो उनको लेना चाहिए इस्तीफा, लेकिन वह दोषी नहीं है, फिर भी नैतिकता के आधार पर ये बातें सामने आती है। लेकिन सीपी ठाकुर जी ने कहा है ये पार्टी से मामला नहीं है, पार्टी अभी तक अपनी राय नहीं दी है।
जदयू ने इस मांग पर अपना पुराना रुख दोहराया है। पार्टी ने पूछा है कि मंत्री के खिलाफ साक्ष्य कहाँ है और साथ ही नसीहत भी दी है कि जिनके पास साक्ष्य हैं वे इसे सीबीआई या अदालत के समक्ष प्रस्तुत करें। इन सब के बीच नीतीश कुमार ने कल फिर इस मसले पर पटना में सार्वजनिक रूप से अपनी प्रतिक्रिया दी, मगर कल उनका अंदाज बहुत तल्ख था।
जो गड़बड़ करेगा वो बचेगा, अंदर जाएगा, उसको बचाने वाला भी नहीं बचेगा, वो भी अंदर जाएगा। हम किसी को बचने वाले नहीं है, आज तक नहीं किया है कोई समझौता, चिंता मत करो।
करीब एक साल पहले नीतीश कुमार महागठबंधन के मुख्यमंत्री रहते कुछ ऐसे ही हालातों में घिरे थे। अंतर यह है कि तब आरोप उनके गठबंधन के सहयोगी दल के मंत्री पर था, इस बार उनके ही दल के मंत्री पर आरोप है। क्या नीतीश एक बार फिर से दबाव में है? इस सवाल पर राजनीतिक विश्लेषक महेंद्र सुमन कहते हैं,
गठबंधन पर भी दबाव है और गठबंधन के अंदर भी कुछ कुछ आवाजें उठने लगेंगी, वो उठ रही हैं। जैसे आपने सीपी ठाकुर का बयान देखा, कल हो सकता है कि जदयू का कुछ बयान आए, और ये चुनावी साल है, चुनावी साल में ऐसे भी गठबंधन में थोड़ी हलचल ज्यादा हो जाती है सीटों के बार्गेनिंग के लिए या वगैरह वगैरह। तो नीतीश अभी डिसएडवांटेज में है, सरकार पर दबाव है, गठबंधन पर दबाव है, पूरे जो मतलब देश की जो राजनीतिक परिस्थिति है उसमें नीतीश की अपनी जो पोजीशनिंग है उस पर दबाव है।
बिहार की नीतीश कुमार की अगुवाई वाली एनडीए सरकार के भविष्य पर पहले भी मीडिया और राजनीतिक गलियारों में सवाल उठते रहे हैं। यह तो आने वाले दिनों में ही साफ हो पाएगा कि मुजफ्फरपुर यौन शोषण मामला नीतीश सरकार पर कितना असर डालती है, लेकिन जानकार कहते हैं कि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं होता। मनीष शांडिल्य, बीबीसी पटना।
कल करीब 150 साल पुराने मुगल सराय जंक्शन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कर दिया गया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कई केंद्रीय मंत्रियों की मौजूदगी में औपचारिक तौर पर इस स्टेशन का नाम बदल दिया गया। हालांकि नाम बदलने को लेकर सरकार, विपक्ष के अलावा सहयोगी दलों के निशाने पर भी आ गई है। सुनिए लखनऊ से समीरात्मज मिश्र की ये रिपोर्ट।
मुगल सराय स्टेशन का नाम बदलने का फैसला तो काफी पहले ही हो गया था, लेकिन भगवा रंग में रंगी दीवारों और मंत्रियों नेताओं की भारी भरकम मौजूदगी में रविवार को इसे औपचारिक रूप से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन का नाम दे दिया गया। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल की मौजूदगी में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के हाथों ये कार्य संपन्न हुआ। स्टेशन के नए नामकरण पर अमित शाह बोले,
आज भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज जिस स्थान पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की हत्या हुई थी वो मुगल सराय स्टेशन का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के साथ जोड़ने का महान कार्य आज संपन्न हुआ है। जिन्होंने एकात्म मानववाद को दुनिया को भेंट किया वो पंडित जी के नाम पर आज योगी आदित्यनाथ जी और प्रधानमंत्री जी के इनिशिएटिव से एक 10 एकड़ भूमि में इसी स्थान पर बहुत बड़ा स्मारक और रिसर्च सेंटर भी बनने जा रहा है।
इस कार्यक्रम को बाकायदा एक जनसभा का रूप दिया गया था और मंच पर अमित शाह और पीयूष गोयल के अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्रनाथ पांडे, रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा जैसे कई बड़े नेता मौजूद थे। कार्यक्रम भले ही स्टेशन के नए नामकरण का था, लेकिन अमित शाह ने विपक्ष पर हमलावर होने में कोई कसर नहीं छोड़ी।
मित्रों, मैं उत्तर प्रदेश को जानता हूँ, सिर्फ बुआ भतीजा नहीं, इनके साथ राहुल जी भी मिल जाए 73 की 74 सीटें होगी, हम 72 नहीं होने देंगे।
वही स्टेशन का नाम बदलने और स्टेशन की दीवारों को भगवा रंग से रंगने के मामले में विपक्षी दल सरकार को पहले ही घेर चुके हैं। अब सरकार के सहयोगी दल भी खुलकर इसके विरोध में आ गए हैं। राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर बोले,
मुगल सराय का नाम बदलने से ना जो ट्रेनें लेट हो रही हैं वो ठीक हो सकती हैं। हमको ट्रेन जो विलंब चल रही है उसको ठीक किया जाए, ट्रेन में जो दुर्व्यवस्था है उसको ठीक किया जाए, और नाम बदलने से विकास नहीं हो सकता है।
मुगल सराय स्टेशन का निर्माण दिल्ली हावड़ा रेल लाइन पर 1862 में ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में हुआ था, तब से इसका यही नाम चला आ रहा है। स्टेशन का नाम बदलने को लेकर स्थानीय लोगों में भी कोई बहुत उत्साह नहीं दिखा। हाँ, कुछ लोग ये जरूर कहते दिखे कि बोर्ड पर नाम भले ही बदल दिया गया हो, लोग तो इसे मुगल सराय ही कहेंगे। समीरात्मज मिश्र, बीबीसी लखनऊ।
अब बात करते हैं एक अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम की। इराक और सऊदी अरब के बाद ईरान भारत को तेल बेचने वाला तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। ईरान पर लगाए गए अमरीकी प्रतिबंध का पहला चरण आज से शुरू हो रहा है। पिछले हफ्ते इस तरह की खबरें आई थीं कि सरकारी तेल कंपनियों ने जुलाई में ईरानी तेल की जबरदस्त खरीदारी की। प्रतिबंधों का दूसरा चरण जब 4 नवंबर से शुरू होगा तो ये सिलसिला रुक जाएगा। बीबीसी संवाददाता विभुराज ने इस मुद्दे पर बिजनेस जर्नलिस्ट शिशिर सिन्हा से बात की और ये पूछा कि भारत पर इसका कितना असर पड़ेगा।
देखिए, भारत के लिए जो कच्चे तेल के जो सप्लाई करने वाले देश हैं, जहां से हम कच्चा तेल लेते हैं, उनमें 4 प्रमुख देश हैं, ईरान, इराक, सऊदी अरब और आपका कुछ हद तक वेनेजुएला है। अब परेशानी यह है कि अभी तक हमने जो है अमेरिकी जो प्रतिबंध थे, पाबंदी थी, उससे निपटने के लिए हमने कुछ इंतजाम कर रखे थे। जैसे हमने रुपी रियाल डील कर रखा था, यानी कि हम उसका पेमेंट रुपए में कर सकते हैं जो वहाँ के बैंक है। दूसरा हमारा बार्टर सिस्टम भी था कि जैसे हमें कुछ फूड ग्रेन देना है उसके बदले में हम कच्चा तेल ले लेंगे। लेकिन असली परेशानी क्या है जो नवंबर से शुरू होने वाली है, क्योंकि अमेरिकी प्रतिबंध जो है वो 2 चरणों में है। पहला चरण कल से है, यानी कि 6 अगस्त से है, जब आपका ना तो डॉलर से रियाल खरीदा जा सकेगा और ना ही रियाल से डॉलर खरीदा जा सकेगा। दूसरा जो है वो ये है कि जो अमेरिकी टैंकर्स हैं जो कि कच्चे तेल को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाते हैं, उनका इस्तेमाल पूरी तरह से नवंबर से बंद हो जाएगा। नवंबर से हम ईरान से तेल नहीं ले सकेंगे, क्योंकि वहां से जो तेल लाना है वो जो टैंकर्स हैं, अमेरिकी टैंकर्स हैं, वो नहीं ला सकते हैं। दूसरा, री इंश्योरेंस की फैसिलिटी होती है जो कि इंटरनेशनल ट्रेड में सबसे इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट होता है, वो नहीं हो सकेगा क्योंकि वो अमेरिकी कंपनी मुहैया कराती है। तो हमारी समस्या यहाँ पर ये हो जाएगी कि हमारा एक सोर्स जो है वो बंद हो जाएगा। दूसरा जो अल्टरनेटिव है वो है वेनेजुएला। खबर ये भी है कि वेनेजुएला के खिलाफ भी जो है वो पाबंदी लगाई जा सकती है। अगर ऐसा हुआ तो हमारे लिए कच्चे तेल की सप्लाई जो है उसके ऊपर असर पड़ सकता है। तो फिलहाल थोड़े समय के लिए तो आपको परेशानी नहीं होने वाली है, लेकिन अगर ये स्थिति बनी रही तो नवंबर के बाद हमारे लिए चिंता जरूर बढ़ेगी।
भारत की अमेरिका से बात भी चल रही है ईरान के पे लगे प्रतिबंधों के सिलसिले में, तो आप ऐसा देखते हैं कि कोई रास्ता निकलने की संभावना हो?
एक रास्ता है, अगर हमें अमेरिका इस बात की रियायत दे देता है कि हम ईरान से कच्चा तेल ले सकते हैं और उसके लिए यूरो या दूसरे जो करेंसीज हैं उनमें हम पेमेंट कर सकें, तो वो शायद हमारे लिए शायद एक रास्ता आसान बना देगा। लेकिन अभी तक जो अमेरिका का रुख है वो बिल्कुल नरम होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है।
ईरान के साथ भारत के संबंधों पे इसका कोई असर आप देखते हैं?
पहले भी ऐसा हुआ है कि जब हमने ईरान के साथ व्यापार जो किए थे वो तमाम रास्ते अपनाए थे, लेकिन उसमें उतनी ज्यादा कामयाबी नहीं मिल पाई थी। अब दिक्कत ये है कि जब बड़े पैमाने पर जो है पाबंदियां नए सिरे से जो है वो लगाई जा रही हैं, तो हमारी दिक्कतें बढ़ेंगी। द्विपक्षीय संबंध अपनी जगह होंगे, लेकिन वही मैंने कहा कि जब माध्यम टूट जाएगा तो आप व्यापार कैसे करेंगे।
और अब समय है अखबारों की समीक्षा का। सर्वप्रिया, दिल्ली से छपने वाले अखबारों में क्या क्या सुर्खियां हैं आज?
आदर्श, बहुत कुछ खास छपा है वैसे तो आज के अखबारों में। जैसे नवभारत टाइम्स की जो पहली खबर है वो है जम्मू कश्मीर से, जो जम्मू कश्मीर को जो स्पेशल जो मिलता है अधिकार है 35A, उसके खिलाफ कई सारी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में हैं और अभी सोमवार को उसको लेकर सुनवाई भी होगी। तो उससे पहले कश्मीर में काफी जो हालात थे वो काफी गर्मा गए, घाटी बंद कर दिए गए, काफी धरना प्रदर्शन वहां पर हुए हैं और 6 दशक से जारी आर्टिकल 35A को संवेदनशील मसला समझा जाता है और इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट में जो भी फैसला है इसके दूरगामी राजनीतिक नतीजे देखे जा रहे हैं, ये लिखना है नवभारत टाइम्स का
जी।
और इसके अलावा एक बड़ा ही दिलचस्प बयान मैं नितिन गडकरी की तरफ से आया। हम सब जानते हैं कि मराठा आंदोलन चल रहा है, इस बार महाराष्ट्र में आरक्षण को लेकर उन्हें आरक्षण चाहिए, तो उस पर नितिन गडकरी का एक बयान है कि भाई जब नौकरियां ही नहीं है तो फिर आरक्षण का क्या फायदा
जी।
तो वो खुद ही कह रहे हैं कि सरकारी भर्ती रुकी हुई है, नौकरियां कहाँ है, तो भाई आप किस लिए ये जो सोच है आपकी आरक्षण को लेकर, तो भाई क्या इसका क्या फायदा है। इसके अलावा एक और जो अभी हम मुजफ्फरपुर को लेकर जो हम अभी पूरी खबर सुना रहे थे अपने श्रोताओं को, एक वैसा ही उत्तर प्रदेश में भी देवरिया में एक ऐसा ही जो कांड है वो सामने आया है। देवरिया नारी संरक्षण गृह में देह व्यापार की जो शेल्टर होम है वहां पर इसी तरीके का एक देह व्यापार होता था, और उसमें से मतलब जब पुलिस को सूचना मिली, पुलिस ने छापा मारा वहां पर, तो 42 लड़कियों में से 24 मिल पाई हैं, बाकी 18 अभी लापता हैं, उनकी अभी तलाश की जा रही है।
ये अमर उजाला की खबर
जी, अमर उजाला की खबर है। और संरक्षण गृह संचालिका गिरिजा त्रिपाठी को पति मोहन समेत गिरफ्तार कर लिया, मतलब गिरफ्तारी तो हुई है और अभी सख्त कार्रवाई की अभी उम्मीद है
जी।
इसके अलावा एक हिंदुस्तान टाइम्स की खबर है कि जो यमुना का जो पानी है वो बिल्कुल जहरीला हो चुका है। यमुना, हिंडन, रामगंगा और काली नदी जो एक एक पूरे यहाँ पर दिल्ली में एक उस तरीके से बहती है, उसका पानी जहरीला हो चुका है। इन नदियों का पानी ना तो पीने योग्य है और ना नहाने लायक। इसका जो ये जो बात कही है वो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB ने NGT की अपनी रिपोर्ट में पेश की है
जी।
ये बहुत ही ऐसा मसला हम कई बार उठाते ही रहते हैं आदर्श पानी को लेकर, लेकिन खैर आज के अखबारों में यही खबर
जी। बहुत बहुत शुक्रिया सरप्रिया। और अब जिसका आपको रहता है इंतजार, पाकिस्तान से वसीतुल्ला खान की डायरी।
आपको तो अरविंद केजरीवाल, लालू जी, मोदी और राहुल अलग अलग देखने पड़ते हैं, हमें तो सौभाग्य से ये सारे कैरेक्टर एक ही आदमी में मिल गए हैं। नाम इस भाग भरे का ले तो लूं, पर इस बुढ़ापे में सोशल मीडिया पे गालियां खाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। जब एक हफ्ते पहले इमरान खान के प्रवक्ता फवाद चौधरी ने ये सूचना उड़ाई कि नए प्रधानमंत्री खुले मैदान में शपथ ग्रहण करेंगे और इसके लिए सार्क देशों के नेता और इमरान खान के क्रिकेटर और फिल्म जगत के दोस्तों को भी न्योता दिया जा रहा है, तो लाखों लोगों की तरह मेरी खुशी का भी ठिकाना न रहा। मैं सोचने लगा कि कैसी रापचिक तस्वीर बनेगी जब पहली लाइन की कुर्सियों पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार, नरेंद्र मोदी, गवास्कर, जनरल बाजवा, आमिर खान, हसीना वाजिद, नवजोत सिंह सिद्धू, अशरफ गनी, कपिल देव और कपिल शर्मा बैठे होंगे। तहरीक इंसाफ के एक और नेता ने तो ये तक उम्मीद दिला दी कि सलमान खान, शाहरुख खान और जीनत अमान भी आने के लिए बेकरार हैं, मगर इमरान खान ने अगले ही दिन हमारी खुशी का ये कह के गला घोंट दिया कि कोई नहीं आ रहा। यानी शपथ बहुत सादा तरीके से ली जाएगी और चाय के साथ छुआरे और बताशे बांट दिए जाएंगे। मुझे लगता है कि मेहमानों के बुलाने का सारा खेल बस मोदी के नाम पे बिगड़ा। अगर मोदी को दावत दी और उन्होंने आने से इनकार कर दिया तो क्या होगा? अगर वो वाकई आ गए तो फिर कहीं कोई शरारती टीवी चैनल इमरान खान के पुराने वीडियो क्लिप न चला दे, नवाज शरीफ मोदी का यार है, मोदी के यारों को एक धक्का और दो। पाकिस्तान ने मेरे हिसाब से एक मास्टर स्ट्रोक जाया कर दिया। फर्ज करें मोदी अगर ना आने के लिए कोई बहाना बनाते तो दिल बड़ा रखने पे दुनिया में पाकिस्तान की वाह वाह होती और मोदी के बारे में कहा जाता कि छाती भले 56 की मगर दिल अब तक 55 का। अगर मोदी आ जाते तो 2.5 वर्ष से दोनों देशों के ताल्लुकात पे जमी बर्फ थोड़ी बहुत जरूर हटती और दोनों नेता जो पहले भी एक दूसरे से मिल चुके हैं एक दूसरे की नीयत और अच्छे से टटोल पाते। दोनों सूरतों में पाकिस्तान का कोई नुकसान ना होता बल्कि इमेज बेहतर ही बनता। इस बहाने इमरान के पुराने क्रिकेटी यार और बॉलीवुड के सुपरस्टार भी आ जाते तो तब और अच्छा इमेज बनता कि पाकिस्तान ऐसा वैसा देश नहीं है जैसी छवि उसके बारे में भारत में बनाई जाती है और फिर भारत ये छवि बाकी दुनिया में बेचने की कोशिश करता है। ये मौका तो हाथ से निकल गया। अब जो होगा अगले वर्ष भारतीय आम चुनाव के बाद ही होगा। उम्मीद है तब भी इमरान सरकार अपने पांव पे टिकी हुई होगी और ये गुरबी सीख चुकी होगी कि पहले तोलो फिर बोलो, ना कि पहले बोलो फिर तोलो।
ये डायरी कैसी लगी हमें लिखिएगा जरूर। और अब समय है साप्ताहिक कार्यक्रम खेल और खिलाड़ी का।
खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम के साथ मैं हूँ आदेश कुमार गुप्त। कोई चमत्कार नहीं हो सका और एक बार फिर आस निराश भई और भारत के स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी वो सारला वेंकट सिंधु कल चीन में समाप्त हुई विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के खिताबी मुकाबले में स्पेन की कैरोलिना मारिन से हार गई और हार भी ऐसी की लगा जैसे सातवीं वरीयता हासिल मारिन के लिए ये जीत उनके लिए बाएं हाथ का खेल थी। इत्तेफाक से मारिन बाएं हाथ की ही खिलाड़ी हैं जिन्होंने सिंधु को 21-19, 21-10 से हराया। कैरोलिना मारिन ने तीसरी बार विश्व चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया है। विश्व चैंपियनशिप के फाइनल में सिंधु की हार को लेकर पूर्व एशियन चैंपियन दिनेश खन्ना कहते हैं,
पहली गेम में तो पीवी सिंधु जिन्होंने थोड़ी सी बढ़त बना के रखी थी 19वें अंक तक, पर पहली गेम हारने के बाद दूसरी गेम में जो मैं समझता हूँ कि जो उनकी गति है कैलना मारिन की, उसके साथ वो अपनी स्पेस नहीं रख पाए।
और अब समीक्षा। विदेशी जमीन पर फिर ढेर हुए घर के शेर, नहीं झेल सके स्विंग के तेवर। भारत के दावों को खोखला साबित किया इंग्लैंड ने पहला टेस्ट मैच 31 रन से जीतकर।
सर, स्विंग सिर्फ हिंदुस्तानी प्लेयर्स को नहीं, मुझे लगता है कि दुनिया में किसी भी बैट्समैन को स्विंग तंग कर सकती है। और आप साउथ अफ्रीका सीरीज देखिए, हमने हर मैच में 20 विकेट लिए, तो स्पिनर्स ने कितने विकेट लिए उसमें से।
इंग्लैंड रवाना होने से पहले भारत के कप्तान विराट कोहली को मालूम था कि 5 टेस्ट मैचों की सीरीज पर ही सबकी नजर रहेगी और तेज और स्विंग गेंदों को खेलना भारतीय बल्लेबाजों के लिए टेढ़ी खीर ही रहा है। और बर्मिंघम में खेले गए पहले टेस्ट मैच में मिली 31 रन की हार ने इस सवाल को और भी बड़ा कर दिया। जीत के लिए 194 रनों का लक्ष्य भी भारत हासिल नहीं कर सका और 162 रन पर सिमट गया। और जिस दक्षिण अफ्रीकी दौरे की बात विराट कोहली ने की, वहां भी तो भारत टेस्ट सीरीज 2-1 से हारा था। वहां भी पहले टेस्ट मैच में जीत के लिए 208 रन की तलाश में पूरी भारतीय टीम 135 रन पर ढेर हो गई थी और 72 रन से हारी। रही बात स्पिन की, तो तेज गेंदबाजों की कामयाबी के दबदबे के बीच आर अश्विन ने पहली पारी में 4 और दूसरी पारी में 3 विकेट लेकर अपना दमखम दिखाया। लेकिन बल्लेबाजों को तो जैसे सांप ही सूंघ गया जब जेम्स एंडरसन, स्टुअर्ट ब्रॉड, बेन स्टोक्स और युवा सनसनी सैम कुरेन की स्विंग होती गेंद उनके बल्ले के पास से निकली। कमाल तो भारतीय गेंदबाजों ने भी किया, लेकिन इंग्लैंड की इस जीत को नहले पर दहला जैसा मानते हैं क्रिकेट समीक्षक विजय लोकपल्ली।
एकदम ब्रिलियंट परफॉर्मेंस इसलिए है इंग्लैंड का क्योंकि ज्यादा उनके पास रन नहीं थे डिफेंड करने के लिए। और भारत की जो बैटिंग लाइनअप की हर कोई बात करता है, शिखर धवन, केएल राहुल, मुरली विजय, अजिंक्य रहाणे और फिर विराट ने तो पहली पारी में शतक भी बनाया, अपना सब कुछ उन्होंने फॉर्म अच्छा दिखाया, लेकिन एक ही प्लेयर मैच नहीं निकाल सकता था। तो इंग्लैंड के लिए इससे पहले भी उन्होंने बहुत मैच जीते हैं, पर ये बहुत बहुत यादगार थी।
इस मैच में कप्तान विराट कोहली ने दोनों पारियों में जिस अंदाज में खूंटा गाड़ कर बल्लेबाजी की वो तो काबिले तारीफ है ही, लेकिन अब उन्हें भी पता चल गया होगा कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। और अब वो क्या कहेंगे, खासकर उन दावों को लेकर जो उन्होंने बड़े दार्शनिक भाव में भारतीय टीम को लेकर किए थे।
एज ए प्रोफेशनल क्रिकेटर अगर हम आपकी तरह सोचेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी बहुत, क्योंकि हम लोग खेल नहीं पाएंगे, हम बाहर की चीजों पे फोकस नहीं करते हैं। ये उस बारे में नहीं है कि मैं या कोई एक प्लेयर और क्या करता है टूर पे, हम एज ए टीम क्या करते हैं टूर पे, वो हमारे लिए मेन गोल है और हमारा फोकस गोल है।
अब जो होना था हुआ, पर दूसरे टेस्ट मैच में क्या हो, विजय लोकपल्ली कहते हैं,
चेतेश्वर पुजारा को आपको वापस आना पड़ेगा क्योंकि आपके पास एक बैट्समैन तो ऐसा होना चाहिए जो एक एंड पे खड़ा रहे। और शायद यहाँ पे मैं कहूँगा वही बात है कि हम बाद में कहना आसान होता है, पर पुजारा की कमी जरूर खली।
एक और क्रिकेट समीक्षक अयाज मेमन की राय भी ले लें।
जिस तरह से परेशान किया कुलदीप यादव ने इंग्लैंड के बल्लेबाजों को T20 में और ODIs में, तो उनकी जगह हक से बनती है। अब ये है, बड़ा चैलेंजिंग सिचुएशन है कुलदीप के लिए ये प्रूव करने के लिए कि वो टेस्ट क्लास बॉलर है।
वैसे विराट कोहली पहली बार ICC टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 बल्लेबाज बन गए हैं, लेकिन अभी तो उनके कंधों पर नंबर 1 टेस्ट टीम भारत को इंग्लैंड से टेस्ट सीरीज में बराबरी पर लाने और स्विंग के खिलाफ अपने बल्लेबाजों का मनोबल बढ़ाने की है। खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम में आज बस इतना ही।
और अब विदा लेने से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर सर्वप्रिया सांगवान से।
इंडोनेशिया के लॉम्बोक द्वीप पर रविवार को आए शक्तिशाली भूकंप में अब तक 82 लोगों की मौत की खबर है। अधिकारियों का कहना है कि जख्मी होने वालों की संख्या सैकड़ों में है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हजारों छात्र 8 दिन से सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। मुद्दा है सड़क सुरक्षा का। पिछले रविवार को हुए सड़क हादसे में एक तेज रफ्तार बस ने एक लड़के और लड़की को कुचल दिया था, जिसके बाद से ही प्रदर्शनकारी सख्त सड़क सुरक्षा कानून की मांग को लेकर अड़े हुए हैं। दक्षिण सूडान की सरकार ने अपने देश के विद्रोही संगठन के साथ एक लिखित समझौता किया है। राष्ट्रपति सलवा कीर और विद्रोही नेता रीक मेशर के बीच समझौता है सत्ता में साझेदारी का, जिसका मकसद 5 साल से चल रहे गृह युद्ध को खत्म करना है। स्विट्जरलैंड के पूर्वी हिस्से में एक विंटेज हवाई जहाज पहाड़ से टकरा गया जिसमें सवार सभी 20 लोगों की मौत हो गई।
बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत के इस अंक में इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाला शाकिर आलम ने। शाम 7:30 बजे दिन भर कार्यक्रम के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक जुड़े रहिए bbchindi.com के साथ। आदर्श राठौर को दे इजाजत। नमस्कार।